તારીખ 17/11/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 69.
મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, સાતમા અધિકાર, નિશ્ચય ભાષિતા, સ્વરૂપ વિવરણ ચલતા હૈ. નિશ્ચયાભાષી अपना शुद्ध स्वरूप को नहीं अवलंबता हुआ अपने को शुद्ध मानता है और रागादि का अकर्ता अपने को मानता है. कहते हैं कि वो आभास है, इससे दुख होता है, एक काल्पनिक स्थिति है और इससे दुख होता है. 196 पृष्ठ पर तीसरा पैराग्राफ. तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक का अपना नहीं, रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादि को मिटाने का उपाय करना भी नहीं रहा. तो स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है. क्या हुआ कि ऐसा गलत श्रद्धान से क्या आपत्ति आई, कैसा दोष हुआ कि रागादि को अपना नहीं जाना, अपराध अपना होते हुए भी अपना नहीं जाना है और कर्ता होकर के परिणमन करता है फिर भी अपने को अकर्ता माना. भूल तो यहाँ है कि परिणमन तो कर्ता होकर के करता है और मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, ये तो सीधी भूल है. तब उसको रागादिक होने का भय नहीं रहा क्योंकि राग मेरा है नहीं, कैसा भी राग हो जाए हमें क्या, कोई भी प्रकार का अशुभ राग होता है तो उनको हम तो करता ही नहीं, राग मेरा है ही नहीं, ऐसा मानता है, ऐसा बोलता है, ऐसा विकल्प भी करता है. तो उनको ऐसा राग मिटाने का फिर उपाय भी नहीं होता है, उसका राग का भय भी नहीं है कि ये दुखदायक है, दुर्गति का कारण है और इसके मिटाने के लिए इसको उपाय भी नहीं है क्योंकि मेरा नहीं है, मैं क्यों इसको मिटाऊं, होने दो जैसा होता है. तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है. यहाँ कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि शास्त्र में तो स्वरूप का ज्यादा जोर देना, स्वरूप पर वजन देना, स्वरूप को मुख्य करना, ऐसा उपदेश तो आया है और हम भी ऐसा ही करते हैं, हमको भी स्वरूप पर जोर देना है. और शास्त्र में आया है कि राग स्वभाव से जीव नहीं कर सकता है तो हम भी ऐसा नहीं क्यों नहीं लेवे. स्वभाव में आकर के, स्वभाव का अवलंबन लेकर के, स्वभाव की दृष्टि करके तो ऐसा होवे तो यथार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं हुए और मान लेवे तो ये सभी प्रकार की आपत्ति आ जाएगी. और इसका फल अनंत संसार में परिभ्रमण है, संसार में परिभ्रमण नहीं लिखा, इसका फल अनंत संसार में परिभ्रमण है क्योंकि स्वच्छंद किया, उसने स्वच्छंद कर लिया. तो ऐसा निश्चयाभासी स्वच्छंद होकर के परिणमन करता है, वो अनंत संसार का कारण है, अनंत संसार उसमें से पनपेगा और अनंत दुख को प्राप्त करेगा. यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है, देखो समयसार में तो ऐसा कहा है कि जीव का नहीं है राग आदि भाव, जीव का नहीं है ऐसा कहा है, इसलिए हम करते हैं। समयसार पढ़ करके ऐसा करते हैं। पंडित जी ने सब समयसार में से लिया, दोनों बात समयसार में से लिया। क्या समयसार में पूर्वार्ध पर विरोध बात आचार्य महाराज ने लिखी है क्या कि ऐसा तो हो सकता नहीं? वर्णाद्या वा रमो राग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवासि पुंसः, ये समयसार का 37 नंबर का कलश है। पूरा कलश नीचे फुटनोट में दिया है, उसका दूसरा जो चरण है, तेने एवांत तत्वतः पश्यतो मे नो दृष्टा स्युः दृष्टम् एकम् परम स्यात्, ऐसा करके दूसरा चरण पूरा दिया है। यहाँ तो जिसका आधार लेता है स्वच्छंदी निश्चयाभासी, उतनी बात लिया है। अच्छा, गुजराती में पूरा, यहाँ हिंदी में एक ही लिया है, मूल में एक होगा। इसका अर्थ कि वर्णादिक तथा रागादिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न है। तो इस आत्मा से भिन्न है माने क्या कि आत्मा के मूल स्वरूप से भिन्न है। लेकिन अभी राग आदि करता है, वो राग मेरा नहीं है ऐसा करता हो करके परिणमन करके अकर्ता मान ले तो वो तो नितांत भ्रम है। अकर्ता होवे तो ज्ञाता दृष्टापणे की ज्ञान धारा, ऐसी ज्ञान दशा होनी चाहिए। जब भी तो अकर्ता बराबर है, लेकिन ज्ञाता दृष्टापणा तो उत्पन्न हुआ नहीं या पुरुषार्थ से किया नहीं और कर्ता होकर के परिणमता है, फिर कहेगा नहीं ये तो राग का कर्ता मैं नहीं हूं, तो वो बात गलत है, वो बात सही नहीं है। इसलिए शास्त्र वचन को भी यथार्थ रूप से समझना चाहिए और अपनी भूमिका को लागू नहीं होता हो फिर भी मान ले कि हम भी ऐसा करता है तो ये बात तो नकल करने की हो गई। जैसे संप्रदाय में लोग उपवास करके तपश्चर्या की नकल करता है कि देखो भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपश्चर्या की थी, ऋषभदेव भगवान ने एक वर्ष तक उपवास किया था, 6 महीने में आहार नहीं मिला था पूरा 1 साल, इसलिए उसको वर्षी तप कहते हैं कि 1 वर्ष तक उपवास किया था। अभी तो किसी की गुंजाइश नहीं है कि 1 वर्ष तक कोई उपवास करे, इसलिए कुछ न कुछ दूसरे प्रकार से उसकी नकल कर लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। ऐसे तो कोई धर्म होता नहीं है। हाँ, भावना तो अच्छी है, भावना तो रखनी चाहिए, भावना तो इस मार्ग में शुरू से ही पूर्णता की होती है, अधूरी होती नहीं है। मैं पूर्ण शुद्ध हो जाऊं, सिद्ध पद को प्राप्त करूं, ऐसा भव के अभाव रूप जो सिद्ध पद है इसकी भावना होती है तो वो भवनाशिनी हो जाती है। क्योंकि भावना किसकी है कि अपुनर्भव की भावना है, पुनर्भव नहीं हो गए ऐसा अपुनर्भव की भावना है, वो तो भव का नाश कर देगा। भावना तो अच्छी चीज है,
जो भावना होगी वही होगा,
वही होगा, वैसा ही होगा। भावना निष्फल कभी नहीं जाती, ऐसी बात है, लेकिन होनी चाहिए ईमानदारी से। क्या होनी चाहिए? ईमानदारी से। वो भावना पंचम काल को नहीं देखती, भावना पंचम काल को नहीं देखती, नहीं भावना काल को उल्लंघन करके आती है, वो काल को निग्लेक्ट कर देती है, वो काल को गिनती नहीं है, ऐसी बात है, भावना काल को नहीं गिनती है। हाँ, पूर्णता ने लक्ष्य ही वास्तविक शुरुआत होती है। देखो गुरुदेव ने महान सूत्र दिया है, बहुत बड़ा सूत्र दिया है वो तो। तथा वही रागादिक को पुद्गल में कहा, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। तो फिर वो किस प्रकार से कहा है? जिज्ञासा तो बराबर है। आप हमारी गलती निकालते हो कि हम रागादि अपना नहीं है, अकर्ता है, ऐसा मान लेते हैं, हमारी भूल है। तो फिर शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में लिखा है इसका प्रकार कौन सा है वो तो बताइए। जिज्ञासा तो बराबर है, प्रश्न तो बराबर है कि फिर शास्त्र में लिखने का आशय क्या है, हेतु क्या है, ये बताइए। उत्तर, रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से उपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। क्या? रागादिक भाव कर्म के उदय के निमित्त से या संयोग की उपाधि धारण करके होता है और जीव अपना स्वभाव को नहीं जानता है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है। जैसे कोई क्रोधी है तो कहेगा भाई मेरे तो गुस्सा आ जाएगा, मेरी ये प्रकृति है, मेरे को गुस्सा आएगा। लोभी बोलेगा क्या भाई मेरी प्रकृति है, मैं खर्च नहीं कर सकता, पैसा तो है मेरे पास लेकिन मैं दान दे सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरी प्रकृति नहीं है। तो वो प्रकृति स्वभाव को अपना स्वरूप मान लेता है, अपना स्वभाव मान लेता है। शुद्ध स्वभाव को, ज्ञाता दृष्टा पवित्राग स्वभाव को, जीव के मूल स्वरूप को नहीं जानता है। उनको स्वभाव समझाने के लिए कहते हैं कि ये तेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, तेरा स्वभाव तो ऐसा है, इसलिए कहा था। लेकिन ऐसा परिणमन नहीं होवे और मान लेवे परिणमन में, इसलिए तो नहीं कहा था। तो ये उसने जो समझा वो बराबर यथार्थ नहीं समझा, तो उसकी उसकी गलती हो गई। रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से उपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें अपना स्वभाव जानता है, और जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? वो तो मानता है कि लोभ करना अच्छा है क्योंकि पैसा बचता है, तो फिर वृद्धावस्था में उसका जरूरत पड़ता है तो बचाया हो तो काम में आवे। और क्रोध नहीं करेंगे तो लोग अपना अपने अपने को अपने साथ काम नहीं निपटाएगा, अपना काम निपटेगा नहीं। क्रोध भी करना पड़ता है और करना चाहिए, जब भी काम सलटता है। हाँ, क्रोध के समय क्रोध करे तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो क्रोध नहीं करे उसके सामने भी क्रोध कर लेता है। शांत शांत जो शांति रखे उसके सामने भी क्रोध करता है, उसका क्या? इधर तो ये प्रकरण चलता है कि जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसा मानेगा? तो मानेगा मैं ठीक कर रहा हूं, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? फिर तो उसका अभाव करने के लिए उसका प्रयत्न और पुरुषार्थ नहीं चलेगा। इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है, अपना स्वभाव मानना वो स्वभाव वो श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है। क्या प्रयोजन है? रागादि को भिन्न कहा, उसमें भी उसको छुड़ाना है, और रागादि को जीव का कहा, उसमें भी उसको छुड़ाना है। प्रयोजन तो दोनों जगह बदलता नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि न्याय बदलता है, नीति नहीं बदलती। कलकत्ता में एक बात कही कि न्याय बदलता है लेकिन नीति नहीं बदलती है। न्याय उल्टा सुलटा होता है। क्या? नीति एक ही रहती है। निर्दोष होने की जो नीति है वो तो नीति राग का अभाव करने की है, वो दोनों जगह दोनों न्याय में नीति एक सी है। राग चाहे रागादि को अपना कहे, चाहे रागादि को पुद्गल का कहे, नीति तो एक ही रहती है। क्या कहा है? उसे मैंने रागादि को छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में भी कहा है। जो कर्म का उदय है वो पुद्गलात्मक है, उसकी मुख्यता करके उसका अनुसरण करता है राग, तो इसकी मुख्यता से पुद्गल का भी कहा है। दृष्टांत देते हैं कि जैसे वैद्य रोग को मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है। किसी को सर्दी लग गई, जुखाम हो गया, तो उसको गर्म दवा देगा, उष्ण दवाई देगा। और यदि आताप की अधिकता देखता है, किसी को गर्मी लग गई, तो शीतल औषधि बतलाता है। बुखार तो बुखार है, किसी को बुखार आया सर्दी की वजह से भी आ सकता है और गर्मी लगने से भी बुखार आ सकता है। और सर्दी की वजह से बुखार आया, वो शरीर बहुत गर्म है, उसको शीत औषधि दे दो, मर जाएगा। वो तो क्या होगा?
मर जाएगा।
ऐसा बुखार आया है और गर्म है इसलिए उसको ठंडा कर दो, ऐसा नहीं चलता।
देखना पड़ता है कौन सा बुखार है।
हाँ, उसका मूल कारण क्या है उसको देखना पड़ता है। बुखार तो एक रोग का चिन्ह है, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कहते हैं, लेकिन मूल रोग क्या है? सर्दी है या गर्मी है, वो देखना पड़ता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं, उसी प्रकार श्री गुरु भी शास्त्र में उपदेश दिया है वो रागादिक छुड़ाने के लिए दिया है। चाहे रागादिक जीव का कह करके कहा समयसार में, वो अगला दो कलश ले लिया 203 वाला, वो भी वहां रागादिक छुड़ाना है। और इधर 37 में पुद्गल का कहा, वहां भी रागादिक छुड़ाना है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, जो रागादिक को परका मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है। क्या? जो रागादिक को परका मानकर मेरा है ही नहीं ऐसा मानकर स्वच्छंद करता है, निश्चयाभासी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा है ऐसा, आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। निश्चयाभासी को तो ऐसा उपदेश देना पड़ेगा कि ये तेरा राग है, तू करता है, तेरा अपराध है, इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। ऐसा करके राग छुड़ाएंगे। तथा तो जो रागादि को अपना स्वभाव मान कर श्रद्धान कराए, मतलब जान करके ऐसा विश्वास दिलाया है, वो सब जानने की बात तो, लेकिन बात कहते हैं श्रद्धान कराया है, मान्यता में ऐसा लेना, ऐसा जानना और ऐसा स्वीकार करना, स्वीकार करने के मुख्यता से श्रद्धान लिया है। तथा जो रागादि को नहीं तो अपना को ऐसा ले ले, क्या रागादि को जीव का माने ऐसा श्रद्धान करें हम? क्या रागादि जीव का है वो श्रद्धा का विषय है? टोडरमल जी कैसे लिखते हैं, ये टोडरमल जी की भूल है क्या? ऐसा नहीं, श्रद्धान कराया मतलब जान करके स्वीकार कराया है। क्यों? क्यों ऐसा मानने में गलती करता है, इसलिए उसकी गलती का स्वीकार कराया है, उतना ही लेना है। तथा वो तो शब्द को पकड़े तो झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तकरार हो जाए, शब्द मलेच हो जाए, शब्द को कहीं पकड़ना नहीं है। कहने का क्या अभिप्राय है वही समझना है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, ये तो जीव का स्वरूप है, संसार में तो राग करना ही पड़े, राग किए बिना संसार चले ही नहीं, जीवन चले ही नहीं, मर जाना पड़े। उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक पर भाव है ऐसा श्रद्धान कराया है, दोनों दिखे श्रद्धान कराए ऐसी जानकारी करके स्वीकार करना, ऐसी बात है। दोनों विपरीत श्रद्धानों से, दोनों में विपरीत श्रद्धान है, होने पर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। क्या टोटल क्या लगाया बुद्धि की बात क्या है आखिर में, कि विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर श्रद्धा सत्य श्रद्धान होगा, और वो सत्य श्रद्धान कैसा होगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का तो स्वभाव नहीं है। स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। वो विभाव पर्याय रूप से ही उत्पन्न नहीं होते ऐसा नहीं कहा।
कर्ता कौन है
इसका निर्णय कहाँ खड़े रह करके करना है, पहला हमारा ये प्रश्न है। फिर रागादि का कर्ता कौन, जीव है या जीव नहीं है? बात तो दोनों आई कि जीव भी है और पुद्गल भी है। अब हमें क्या करना, ये प्रश्न आएगा कि समय सार में तो दोनों बात किया कि जीव का भी है और जीव का नहीं भी है, और बात परस्पर विरुद्ध नहीं है, फिर हम क्या करें, ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसका निर्णय कैसे करेंगे कि पहले निर्णय करने वाले को कहाँ खड़ा रह करके निर्णय करना है, इसका निर्णय पहले करो, फिर यथार्थ उसका उत्तर मिलेगा, वरना आमने सामने बात टकराएगी और समाधान होगा नहीं, ये बात हो जाएगी। कहाँ खड़े हैं देखो, अपने को देख लो कहाँ खड़े हैं। हमको क्या पूछते हैं, जहाँ खड़े हैं वहां अपने को देख लो, और फिर देखो कि रागादि किसका दिखता है। हाँ, भगवान महावीर ने तो सब बात समाधान के लिए की है, लेकिन इस जीव को विपरीत दृष्टि होने से और विपरीत ज्ञान होने से समाधान नहीं होता है, तो जीव की गलती है, उपदेश देने वाले की नहीं है। गद्दा शक्कर को खाता है और उसको कड़ी लगती है, मीठी नहीं लगती है, तो क्या शक्कर का दोष है?
नहीं,
गद्दे का दोष है। ऐसा उपदेश तो मीठा ही है, जीव को हितकर उपदेश दिया है। भगवान तीर्थंकर देव को हितोपदेशी कहने में आया है। क्या कहते हैं, इनके उपदेश हित, आत्मा के हित करने वाले होने से भगवान को हितोपदेशी बताया है। हाँ, वितराग, और उसका उपदेश का क्या विशेषण लगता है कि हितोपदेशी है, क्योंकि इसके निमित्त से सभी का हित होता है, किसी का भी अहित उपदेश से होता नहीं है। कोई कहेंगे कि ऋषभदेव भगवान का उपदेश छूटा और लोग नरक में भी जाने लगे, अन्य मत भी वहां से निकले, तो भगवान के उपदेश के कारण से वो नहीं हुआ था, हाँ उनकी योग्यता से ऐसा हुआ था। भगवान के उपदेश में किसी का भी अहित होवे ऐसा उपदेश का निमित्तत्व नहीं है, ऐसा उपदेश में निमित्तत्व नहीं है। बात चली थी, इधर में चली थी। विद्वान होकर के भी ऐसी स्थापना करते हैं, भगवान का उपदेश से देखो नुकसान हो गया, नहीं, भगवान का उपदेश से किसी को नुकसान होता
नहीं है।
क्यों नहीं होता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो कार्य होता है ऐसा निमित्त तो होना चाहिए। कहते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, जब उपदेश निकला तब ऐसा हुआ, इसलिए हम उसको निमित्त कहते हैं कि उसी वक्त तुझे उपादान को देखने की जरूरत है, निमित्त को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब कब बात, किस बात को कब कैसा देखना है उसका विवेक तो स्वयं को करना पड़ता है। हर बात को एक दृष्टि से देखी नहीं जाती। ऐसा हुआ इस चतुर्थारा के प्रारंभ में जब भगवान आदिनाथ ने उपदेश दिया तो इस भरत क्षेत्र में अन्य मत नहीं थे, पर उस उपदेश सुनकर के बाद में अन्य मत चालू हुए, सुनने वालों ने किया। ऐसे ज्ञानी का उपदेश सुनने वालों ने अपना अपना मत चलाया हो, चलाते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनकी उपादान की भूल है, उसमें निमित्त पना लेने का
नहीं है,
नहीं है, ऐसी बात है। अगर उसका निमित्त पना लिया जाए तो भगवान पर गलत आरोप आए बिना रहेगा
नहीं।
निर्दोष परमात्मा को दूषित ठहराएंगे हैं?
बराबर।
जिनेंद्र देव तो निर्दोष परमात्मा है, ऐसा बोलने में आता है। बाकी भगवान तो अखंड स्वरूप हो गए, उसको कौन खंडित कर सकता है? भगवान को तो कोई खंडित कर सकता नहीं है, लेकिन ऐसा है उनका जो मत है वह उसको छिन्न भिन्न करते हैं, उसके मार्ग को छिन्न भिन्न करते हैं, इसलिए ऐसा बोलने में आता है। क्या कहा? कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। क्या कहा? कि विपरीत श्रद्धान, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा। ये उपादान से बात लिया है कि खुद विपरीत श्रद्धानों से रहित होगा तभी उनको सत्य श्रद्धान होगा, और तब वो उपादान से ऐसा मानेगा कि रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव भाव तो नहीं है। स्वभाव भाव नहीं है क्योंकि अकेला आत्मा ऐसा रागादिक करता नहीं है, ऐसा होता तो सिद्ध पद में भी हो जाता। और कर्म के निमित्त से संसार अवस्था में कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं, द्रव्यगुण में उत्पन्न नहीं होते हैं, पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। विभाव कैसे उत्पन्न होते हैं?
पर्याय
रूप से उत्पन्न होते हैं, उसमें कर्म का निमित्त पड़ता है, उपादान अपना है, वो आत्मा के अस्तित्व में होता है। विभाव पर्याय क्या कहा है? आत्मा के अस्तित्व में उत्पन्न होता है, ज्ञान प्रधानता से लेते हैं। और कर्म के निमित्त से होता है, इसका मतलब क्या? कि जीव स्वरूप में एकाग्र नहीं रहता है तो वो उदय में एकाग्र हो जाता है, उपादान से गिने तो। वो बात अध्याय इधर रखा कि अपना पुरुषार्थ वहां नहीं था, स्वरूप में लीन रहने का पुरुषार्थ
नहीं था।
अगर स्वरूप में लीन रहा जाता तो ये कर्म की निर्जरा हो जाती, कर्म की निर्जरा हो जाती, वहां उदय गिनने में नहीं आता है, वहां निर्जरा गिनने में आती है। देखो
कोई भी कर्म का उदय आता है वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। वो कर्म कर्म का विपाक आने से उदय होता है, विपाक को उदय गिना जाता है, और वही कर्म निर्जरित हो जाता है ज्ञानी को अज्ञानी को सभी को। लेकिन ज्ञानी को निर्जरा बोलने में आती और अज्ञानी को उदय नाम बंद बोलने में आता है। प्रसंग तो जो है सो है। देखिए जिस जिस जीव को चाहे ज्ञानी हो कि कर्मबंध का उदय आया और ज्ञानी अपने स्वरूप में रहते हैं तो बोलते हैं कि उसको तो निर्जरा हुई, उसको तो बंद नहीं हुआ, उसको तो निर्जरा हुई।
पुराना तो दोनों को निर्जरित होता है लेकिन
अज्ञानी
नया उत्पन्न कर लेता है,
इसलिए वो निर्जरा को नहीं बताते हैं। निर्जरा होते हुए बाद निर्जरा को नहीं बताते हैं, बंद को बताते हैं। और उदय तो ज्ञानी को भी हुआ है लेकिन नया कर्म मन नहीं करता है तो उदय नहीं बताते हैं, निर्जरा को बताते हैं। तो क्या कारण है कि प्रसंग तो एक सा है लेकिन देखने का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है और वो सही है यथार्थ है, ऐसा देखना यथार्थ है। फिर से अब किस यथार्थ श्रद्धान होने पर रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है ऐसा मानेगा और कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं ऐसा जानेगा और निमित्त मिटने पर कर्म का नाश हो, निमित्त कैसे मिटेगा कि निमित्त में अपने परिणाम नहीं लगाएंगे तो निमित्त मिट गया, परिणाम लगाया तो निमित्त हुआ और परिणाम नहीं लगाया तो निमित्त नहीं हुआ, बात खत्म। निमित्त मिटने पर स्वभाव भाव रह जाता है, यानी निमित्त परिणाम नहीं लगाया तो परिणाम कहाँ लगाया कि अपने स्वभाव में लगाया।
ज्ञानी ऐसा कर सकता है क्या?
नहीं, ये ज्ञानी की बात लिया है। क्या लिया? दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर, तो विपरीत श्रद्धा से कौन रहित होता है?
ज्ञानी
होता है, ज्ञानी की बात चलती है। ज्ञानी की बात में अज्ञानी के वो नहीं लगाना, अज्ञानी की बात में ज्ञानी को नहीं लगाना, वरना समाधान नहीं होगा। इसलिए इनके नाश का उद्यम करना, इस प्रकार से उसका अवलंबन छोड़ करके स्वभाव का अवलंबन लेकर के कर्म का या नाश का उपाय करना। क्या? कर्म के नाश का, कर्म को मिटाने का उपाय करना। किस तरह से करना? कि इसका अवलंबन छोड़ के, उदय का अवलंबन छोड़ के और स्वरूप का अवलंबन लेकर के। दूसरा कोई इलाज, कोई उपाय, कोई मार्ग है नहीं।
कई मार्ग तो कौन सी भावना होनी चाहिए इस समय कर्म को अगर है? कौन सी भावना में रहना चाहिए इस समय कर्म को अगर हो?
स्वरूप की भावना में रहना चाहिए।
कम हो जाता है वो?
हाँ, स्वरूप की भावना में रहे तो स्वरूप की प्राप्ति होगी। स्वरूप प्राप्ति की भावना में रहेगा तो उदय में वो उलझेगा नहीं।
उलझेगा
ऐसी बात है, जिसको स्वरूप की भावना है वो उदय में नहीं उलझेगा। और स्वरूप की भावना नहीं है वो तो संसार की भावना में तो अनादि से खड़ा है, वो तो संसार में उलझ उलझ करके राज के राचेगा, नाचेगा, सब करेगा, ऐसी बात है।
ना प्रतिकूल आते हैं कर्म उदय बड़ी, बाकी तो कर्म उदय बेहतर।
वो कोई न्याय की बात है क्या? वो बात न्याय की है?
नहीं है, न्याय है।
अपना अपना अपने को जैसा अनुकूल लगे ऐसा ले लेना। हाँ, बस उतनी बात में सब आ जाता है। तो गुरुदेव कहते थे हमारे, तो उसमें सब आ जाता है। क्या वो जो आपने बताया ना, ऐसा ही संसार में लोग अन्याय ही करते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, एक अपना है, एक पराया है, या चाचा दादा का है, साथ में खेलता है, और अपना बच्चा ने अगले को मार दिया, तो उसका माँ बाप बोलेगा, हे तू क्यों मारता है? ये क्या बोलेगा, वो फालतू नहीं मारता है, उसने कुछ किया होगा इसलिए मारा होगा। ठीक है। इसका दोष को गौण करने के लिए का क्या करता है कि उसने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए उसने मारा होगा, इसलिए उसने मारा वो बराबर है। वो बात न्याय नीति की नहीं है। दोष को दोष जानना, गुण को गुण जानना, गुण को दोष नहीं जाने, दोष को गुण नहीं जानना, ये न्याय नीति की बात है। अच्छा, यहाँ प्रश्न है कि यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होगे? भाषा ऐसी बनाई टोडरमल जी ने, कभी तो कर्म का निमित्त जब मिट जाएगा तो स्वभाव रह जाएगा। जैसे स्वभाव के लिए करना ही नहीं है, वो तो सहज रह जाएगा, क्योंकि सहज स्वभाव है, पानी सहज ठंडा होता है, उसी तरह। तो फिर कर्म के, यदि कर्म के निमित्त से होते हैं राग आदि, तो कर्म का उदय तो रहने वाला है, क्योंकि तो पूर्व संचित कर्म है, उसका तो उदय क्रम से आने वाला है ही। तब तक ये विभाव तो दूर कैसे होंगे? हमने तो बहुत लंबी स्थिति वाले कर्म मान लिए हैं, उसका उदय आता रहेगा, भाव कैसे दूर होगा? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। तो फिर तो इसका मिटाना हो सकता नहीं है, क्योंकि उदय आएगा तब तक जीव को राग करना पड़ेगा। ऐसी बात है नहीं, जीव राग करे नहीं करे उदय काल में वो स्वतंत्र है, करना पड़े ऐसी बात नहीं हो सकती। उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। देखो यहाँ पुरुषार्थ लिया है, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उसमें पुरुषार्थ का भी एक कारण है। ये तो सारा आठवां अधिकार, नौवां अधिकार तो उस पर चला है, पुरुषार्थ पर ही चला है नौवां अधिकार। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ही नौवां अधिकार से चालू होता है अपना विषय के अनुसार। तो ये तो सब इसके पहले सब सफाई करने की बात है, उसका बैकग्राउंड बनाने की बात है। मूल जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना है, उसका प्रारंभ ही आखिरी अधिकार से हुआ है, और फिर मोक्षों का सद्भाग्य नहीं रहा तो बात आगे लिखी जाए, इसके पहले ही उनका आयुष्य पूरा हो गया। बहुत समर्थ पुरुष थे टोडरमल जी साहब, बहुत समर्थ ज्ञानी पुरुष थे, बहुत समर्थ ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए आज भी उनको ऐसे बुला जाता है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्रीमान टोडरमल जी, आचार्य कल्प ऐसा बोला जाता है। आचार्य की जिसमें कल्पना की जाए, ग्रस्त होने पर भी, ठेतो ग्रस्त फिर भी उसको आचार्य कल्प ऐसे बताने में आता है, आज भी ऐसी बात है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, इनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। देखो पुरुषार्थ करने की बात, उद्यम माने पुरुषार्थ। एक का जो उसमें जो कारण बुद्धिपूर्वक का होता है उसका तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हमने समझा कि उदय का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, निमित्त का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उदय निमित्त है, और अपना शुद्ध उपादान का अवलंबन लेना चाहिए, ऐसा सुना तो इसका पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक की बात है। देखिए अध्यात्म की बात बुद्धिपूर्वक की होती है। क्या अध्यात्म का जो मार्ग है वो बुद्धिपूर्वक समझा जाए और इसका उद्यम और पुरुषार्थ किया जाए, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हें देखा ऐसा होगा, ऐसी बात वहां लेने में नहीं आती। इस पर तो गुरुदेव ने बहुत प्रवचन किए, क्रमबद्ध पर्याय निकाली तो कि क्या पुरुषार्थहीन करने के लिए ये बात है कि ऐसा है
नहीं,
नहीं। कहने में कभी कोई बात से कहने में आता है, कभी पुरुषार्थ से कहने में आता है, कभी काल लब्धि से कहने में आता है, लेकिन दोनों बात साथ में ही होती है। जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं भी मिले, अबुद्धिपूर्वक कारण तो स्वयं भी मिले, तब कार्य सिद्धि होती है। देखिए सम्यक दर्शन होने में तत्वज्ञान का यथार्थ रूप से अभ्यास करना यह बुद्धिपूर्वक का उपाय है कि यथार्थ रूप से तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन उपवास करने से नहीं होता, सम्यक दर्शन अरिहंत भगवान के पंच परमेष्टी की माला जपने से
नहीं होता,
और सम्यक से करके यात्रा नहीं होता, और करोड़ों का दान देने से और जिन मंदिर बनाने से भी नहीं होता। प्रतिमा की स्थापना करे बोली लेवे 5 करोड़ में, भगवान की स्थापना मैं करूंगा करोड़ रुपया देकर के, सम्यक दर्शन होता है क्या?
नहीं,
नहीं होगा। जैसे गणित सीखने के लिए गणित के प्रोफेसर के पास बैठ करके गणित का विषय आत्मा लेना पड़ेगा, उसमें हिस्ट्री का प्रोफेसर के पास जाकर के हिस्ट्री लेकर के बैठने से कोई गणित सीखने में नहीं आता है। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, वही निमित्त पड़ता है। बुद्धिपूर्वकता का उद्यम वही है, फिर अनुभव होगा उसमें बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक का उद्यम हो तो खरे। तो अबुद्धिपूर्वक का कारण स्वयं में मिल जाता है और कार्य सिद्धि हो जाती है, कर्म का अभाव वगैरह स्वयं में हो जाता है, उसमें बुद्धि लगानी पड़ती नहीं है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक को विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, जैसे किसी को वंश परंपरा चलाना है तो अपना लड़के का विवाह कर देता है, कोई विवाह करेगा तो उसका पुत्रादिक होने से अपना वंश परंपरा चलेगा और अपनी संपत्ति अपने घर में रह जाएगी, वंश परंपरा नहीं होगी तो संपत्ति दूसरे के घर में चले जाएगी। बुद्धिपूर्वक तो बात वो है, लेकिन विवाह करने से वंश परंपरा चले ऐसी कोई बात गारंटेड है नहीं। वहां पुत्र का अर्थी विवादिक का तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयं ही हो तो पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। देखो क्या लिखा,
तत्व विचार,
भगवान की पूजा करना नहीं लिखा, दान देना नहीं लिखा, उपवास करना
नहीं
लिखा, जप करना नहीं लिखा, ये कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा, उसी प्रकार विभाव दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक तो मोह कर्म के उपशम आदि है। मोह कर्म का उपशम होता है, दर्शन मोह का उपशम होता है, सम्यक दर्शन होता है, वो तो स्वयमेव होता है, वो तो स्वयमेव हो जाता है। उपशम करने के लिए कर्म कहाँ दिखने में आता है, तो उसको बिठा दे, द्रव्य सब एक सरखे हैं, द्रव्य सब एक सरखे हैं। जो भाव ऊंचा करता है तो उसका आरोप द्रव्य पर करने में आता है कि इसका द्रव्य ऊंचा है, बाकी द्रव्य तो सभी के
एक
सरखे हैं, जीव जाति तो सभी की एक है। उसी प्रकार विभाव दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि है, क्योंकि कर्म तो दिखने में आता
नहीं है।
सो उसका अर्थ ही जैसे पानी में वो फटक फिटकरी डालते ने, तो बुद्धिपूर्वक तो फिटकरी डालना उतना ही है, और फिर जो मिट्टी के परमाणु तो स्वयं ही बैठ जाते हैं। फिटकरी तो हिलाई, पानी तो शांत था, मैला पानी मिट्टी वाला था वो तो शांत था, फिर भी फिटकरी इसमें हिलाई तो पानी तो अशांत हो गया कि नहीं, सुशांत बराबर किया है। अभी जो परमाणु है वो मिट्टी के परमाणु उपशम हो जाएंगे और ऊपर निर्मल पानी रह जाएगा, वो है बुद्धि पूर्वक होगा। फिटकरी हिलाना लगाना उतनी बुद्धि है, परमाणु तो स्वयं में बैठ जाते हैं, ऐसी बात है। उसका अर्थी कौन, जिसको अपना कार्य सिद्ध करना है, मोक्ष मार्ग में आना है, उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे। देखो ये संप्रदाय में ये बात चली गई है, गुरुदेव की कृपा से अपने में ये बात थोड़ी बहुत अभी रही है, ऐसा कहना पड़े ना, थोड़ी बहुत अभी रही है। क्यों थोड़ी बहुत रही है, कि बहुभाग गुरुदेव के कहलाने वाले मुमुक्षु भी तत्व का अभ्यास नहीं करते हैं, जो करते हैं वो 10-15% से ज्यादा नहीं है, 85% उन्होंने तो छोड़ दिया है। तो संप्रदाय में तो कहां से होगा, गुरुदेव ने तो एक दफे तो सभी को जगा दिया, क्रांति ला दी तत्व का अभ्यास करने के। लेकिन संप्रदाय में दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी कहीं तत्व का अभ्यास देखने में नहीं आता, दूसरी दूसरी बातें चलती हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं चलता है। सो उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, स्पष्ट लिखा है, और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयमेव हो, तब राग आदि दूर होते हैं। तत्व विचार का तो उद्यम बराबर करे, और जितना कर सके उतना बराबर करे, यथार्थ रूप से करे, जितना करे भी वो भी यथार्थ रूप से करे, तो दर्शन मोह का तो पहले बल क्षीण हो जाएगा और आखिर में वो उपशम हो जाएगा, और रागादिक दूर होगा तो उसको अनंतानुबंधी का रागादिक पहले दूर होगा। क्या व्यवस्था है मोक्ष मार्ग में, के पहले सम्यक दर्शन होता है, उसको अनंतानुबंधी का रागादिक क्रोध मान माया लोभ सब चला जाता है, फिर और स्वरूप में स्थिरता होती है, पंचम गुण स्थान में आता है, तो उसके अप्रत्याख्यान वर्णी के रागादिक भी दूर हो जाते हैं, तो बाहर में भी उसका संयम देखने में आता है, कुछ रूप में देश संयम जिसको कहते हैं, या बाहर में त्यागादिक उसको देखने में, राग का अभाव हुआ तो राग की प्रवृत्ति का भी अभाव हो गया, इसका नाम त्याग कहने में आता है, फिर और स्वरूप में स्थिरता बढ़ जाती है, वितरागता बढ़ जाती है, तो प्रत्याख्यान वर्णी का भी अभाव हो जाता है, तो संजलन का बहुत सूक्ष्म मंद उदय रह जाता है, तो उसको कई प्रकार के राग उत्पन्न नहीं होते, तो राग की क्रिया भी उसको नहीं होती, उसको सर्व संयम यानी पूर्ण त्याग कहने में आता है। मुनि दशा का त्याग का विचार से नहीं, यहाँ तो वितरागता से लेते हैं, त्याग का विचार में तो मंद कषाय है, और मंद कषाय में तो कोई मुनि दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन वो सही त्याग नहीं है, छोड़ करके मैं त्यागी होता हूँ ऐसा नहीं लेना है, उसको त्याग का ममत्व छोड़ना ऐसा भी कहने में आता है, अपनत्व रख करके त्याग नहीं करना, पहले अपनत्व छोड़ देना, फिर जो उसका विकल्प नहीं आएगा उसका नाम त्याग कहने में आता है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवादिक भी भवितव्याधीन है, विवाह तो करना ऐसा निर्णय किया और उसके लिए कन्या को खोज भी करे, लेकिन संबंध होना नहीं होना वो तो भवितव्याधीन है, अपने को करना है, लेकिन अगला ना देगा तो क्या करेगा, कोई बलात्कार से तो कोई विवादिक किसी से होता नहीं है, वो तो भवितव्याधीन है। उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षोभ आदि के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है, प्रश्न उठाया क्या करे भाई, हमको तो करो ऐसा कर्म का उदय है कि हमारा ज्ञान में कुछ याद नहीं रहता, हमको स्मृति नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, हम समझते नहीं है। शास्त्र पढ़ने को बैठते हैं तो हमारा जो उघाड़ है सूक्ष्म है वो काम में नहीं आता है, तो ये भी पराधीन है, इसमें भी हम लोग तो पराधीन है, क्या करें, प्रश्न उठाया है। एक एक बात आपने भवितव्य की बात ली, तो फिर हमारा तत्व ज्ञान का अभ्यास भी भवितव्य में हम ले जाए तो क्या बात है। तो तुझे जरूरत लगी पानी की, प्यास लगती है तो वहां तो भवितव्य लेता है, वहां तो पानी को तड़पता चटपटाता है, तड़पता है, और जैसे कैसे भी पानी ढूंढ लेता है। जरूरत लगती है वहां तो बुद्धिपूर्वक उद्यम पुरुषार्थ जीव किए बिना नहीं रह सकता। जहां बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हो सके वहां भी भवितव्य की बात मुख्य करके इस साधन को छोड़ दें तो ये तो विपर्यास है। ये क्या है? ये विपर्यास है। क्या करें, हमको तो स्वाध्याय तत्व विचार करना है लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता, और दुकानदारी करता है, बाजार में जाता है, वहां दिमाग कैसा काम करता है? वहां तो किसी का लेके भी देता नहीं है, दिमाग कैसा काम करता है? उल्टा ऐसा नहीं चले, ये गड़बड़ वाली बात है। उत्तर कि ज्ञानावरण का तो सूक्ष्म तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, संगनी पंचेंद्रिय तू है, तू बाना बताता है कि हम शास्त्र नहीं समझता है, लेकिन ये बात तेरी चलने वाली नहीं है। मन वाला प्राणी जो भी संगनी है वो अच्छी तरह अपने परमार्थ को, अपने सुख दुख को बराबर समझ सकता है, तीरियंज भी समझता है, तू तो मनुष्य है, तीरियंज भी जब समझता है तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा? तो ये तो तेरे है, इसलिए उपयोग का वहां लगाने का उद्यम कराते हैं, श्री गुरु उपदेश देते हैं कि तुझे तेरा उपयोग तत्वज्ञान के अभ्यास में लगाना ही चाहिए। जैसे तू रोज खाता है, पीता है, नींद लेता है, और देहार्थ कमाई करने के लिए 8 घंटा 6 घंटा मजदूरी भी करता है पेट के लिए, तो आत्मा के लिए तू क्या करता है सारे दिन में, दिखा तो सही
बराबर
बुद्धिपूर्वक का क्या? वहां तुझे जरूरत लगी तो कितना भी काम है तो खाना खा लेता है, कितना भी खाना है, काम है तो नींद ले लेता है, हाँ? और कितना भी दूसरा काम हुए तो भी धंधा व्यापार का काम अपना काम में निपट लेता है। हाँ, जरूरत लगी आत्मा के लिए क्या करें? तो आत्मा के लिए तो श्री गुरु की उतना ही आज्ञा है, फरमान है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास कर। तू संसारी प्राणी है, हम जानते हैं कि तुझे बहुत लफड़े हैं, है? तुझे बहुत लफड़े हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास इस बीच में भी हो सकता है, इस बीच में भी हो सकता है। तत्व ज्ञान का अभ्यास कर तो दर्शन मोह की मंदता होगी, और दर्शन मोह का उपशम होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उपयोग को वहां वहां मैंने तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाने का उद्यम कराते हैं उद्देश्य। असंगी जीवों की एक सूक्ष्म नहीं है तो उन्हें उन्हें किस लिए उद्देश्य दें? तो ये उद्देश्य असंगी प्राणियों के लिए नहीं है, संगी प्राणियों के लिए है। भगवान के समक्ष में कौन आते हैं? कि जो तिरियंज संगनी है वो आते हैं, असंगनी तिरियंज
नहीं आते,
नहीं आते। क्योंकि अधिकार किसका है? संगनी का अधिकार है। संगनी मैंने मन वाला, देखो असंगनी कैसे हुआ कि उसको भी मन तो मिला था, लेकिन मन मिला, भगवान का उपदेश भी सुनने को मिला, फिर भी आज्ञा में नहीं रह करके मन का दुरुपयोग किया, विषय कषाय में फंसा तो उसको मन चला गया। असंगनी हो गया तो फिर उतना काल चला जाता है कि बहुभाग तो जीव अधोगति में जाकर के निबोध में चला जाता है। अकाम निर्जरा से कोई इलाज नहीं है उसको, तो अकाम निर्जरा से फिर वो संग नहीं होगा। तभी भगवान का उपदेश सुन करके अपना पुरुषार्थ करेगा तो पता लगेगा इस मार्ग का, वरना फिर असंग नहीं हो जाएगा। संगनी हो करके अपनी संगना को सदुपयोग नहीं किया तो फिर असंगनी हो जाएगा, ये बात है। इसलिए उपदेश संगनी को है, असंगनी को नहीं देते हैं भगवान। यहाँ तक रखें।
देव जी मंदिर भगवान नमो जय हो। नमः पार्वती।